जिससे द्वारा जो भेज रहे हैं एक बाबू हम बाबू और मैंने अपना चाहे और एक बाबू के कही हो जाए एक बार मैंने महाप्रभु बाजारे ना बिकाए चाहो और बाजार में चाव की बिक्री नहीं है दुकान की जरूरत नहीं है, दुकान उठा लेने की जरूरत है, बाजार में बिकती नहीं, बिकता नहीं है चावल। ये तर्जा किसी के समझ में नहीं आया, महाप्रभु जी कुछ उदासीन होते, केवल स्वरूप दामोदर जी कुछ उसका भाव समझे और कोई नहीं समझे। ऐसे गुरु बच्चे से एक पागल मैंने कृष्ण प्रेम का पागल और दूसरा जो कृष्ण का के प्रेम से जगत को पागल बनाने आया है वो मूल पागल। और अद्वैताचार्य जी एक पागल संदेश दिए हैं, पागलपन का संदेश, बाजार में चावल की जरूरत नहीं है, मैंने प्रेम की अब जरूरत नहीं, प्रेम से सब जिसको जिसको देना था वो काम पूरा हो गया, इसलिए अब दुकान हाथ उठा दिया जाए, मैंने अपने अवतार को अब संभाल दिया। तो किसी के समझ में नहीं आया, तो स्वरूप दामोदर के कुछ इस तरह से उनका अद्भुत चेष्टा। गीता का अर्थ भक्ति पर्व बखानते थे और कोई नहीं बखानता, गीता का अर्थ भक्ति पूर्व विशते तद अनंतरम अद्वैतवादी इसका अर्थ लगाते हैं कि वो भगवान में जीव मिल जाता है, ब्रह्म में मिलकर के एक विषदे तद अहंता हम ब्रह्मास्मि कहते हुए और उसे जो पृथक जीव मालूम होता है अभ्यास करते 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 जगत छूटा है और अंत में उनमें मिल गया विषदे तद अहंता। इसकी व्याख्या अद्वैताचार्य जी सबसे पहले उन्होंने किया है, सततम कीर्तयन उसके पहले का है और वो क्या है हमारा वो धर्म ये करता है योग क्षेम मान ये जना पति पास और लगते भक्ति पराम
ब्रह्म प्रसन्न
अंत में भक्ति लाभ करता है। कौन भक्ति पराम इन चीजों के माध्यम से विशदे तदनंतरम भक्ति में प्रवेश करता है। विशदे भगवान में ब्रह्म में ज्योति में ज्योति मिल जाती है ऐसा नहीं, विशदे उनके धाम में प्रवेश करके उनकी सेवा में प्रवेश करता है इसका हुआ। किंतु वो लोग उल्टा उल्टा अर्थ कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि और यही अद्वैताचार्य कुछ दिनों के बाद में शांतिपुर में जाकर विशदे तदनंतरम का यही अर्थ बतलाया हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ और जीव ब्रह्म में मिल जाता। तो महाप्रभु गए और तावड़ को मुक्के से थप्पड़ से जैसे बना दाढ़ी नोच नाच कर और उन्हें पीट करके दुरुस्त कर दिया।
सीता
देवी जी ने आकर के उनकी रक्षा की। अद्भुत क्यों और मार खा करके बड़े प्रसन्न होकर के नृत्य कर ले, यही तो मैं चाहता, मैं और मेरी ये मुझे प्रणाम करते थे और मेरी उपासना करते थे गुरु के रूप में माधवेंद्रपुरी के पास के शिष्य ये हैं अद्वैताचार्य। महाप्रभु जी सोचते थे ये हमारे गुरु जी के ये शिष्य हैं, हमारे ये गुरु
परम गुरु जी के शिष्य
हमारे गुरु हैं, इसलिए इनको प्रणाम करना इनका भक्ति करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए महाप्रभु जी करते थे। और ये देखते थे कि हमारे अंशी के मूल ये शनि महाप्रभु हमारे ये आराध्य, इसलिए ये अद्वैताचार्य उनकी उनका भजन करना चाहते थे सेवा करना चाहते थे। उस सेवा से हटाने के लिए ही अद्वैताचार्य ने निर्विशेष बात गीता का व्याख्या है। महाप्रभु जी बिगड़ कर गुंजन मारने लगे, जब मारने लगे आज मेरा जीवन सार्थक हो, यही मैं चाहता था कि हमारी आप पड़े हैं कि मैं बड़ा हूँ, अब कौन बड़ा। महाप्रभु लज्जित हो गए और शची देवी को एक बार कह दिया कि तुम्हें प्रेम नहीं देंगे, हमारे भक्त का तुमने निरादर किया है। वैष्णव अपराध हो गया है तुम्हारा। तुमने कहा जैसे अद्वैत नहीं, तो ये तो द्वैत है। तो बात तो अच्छी ही थी, बात बुरी क्या थी? द्वैत अच्छा है ना अद्वैत अच्छा है? द्वैत ही तो अच्छा है, सेव्य सेवक का भाव है। तुमने तू अद्वैत नहीं है, द्वैत है। महाप्रभु जी ने कहा जैसे ये माता जी का ये कहना है कि पुत्र से, माता से पुत्र को अलग करता है, पिता से पुत्र को अलग कर देता है, भाई से भाई को अलग कर देता है, यह अद्वैताचार्य भक्ति का खान करके और ऐसा ही कर देता है जैसे कि संसार से उसका संबंध काट देता है। मैया का मन प्राकृतिक स्नेह है नहीं, वो तो कृष्ण के प्रति, महाप्रभु जी के प्रति उनका अनुराग है, इसलिए वो कह सकते हैं इससे बढ़कर क्या अच्छा क्या हो। किंतु संसार के लिए यदि कोई ऐसा उपदेश दे करके जो जीव कोटि जन्मों से भगवान को बुले हैं उनके साथ में संबंध स्थापन करके उनके भजन का उपदेश देता है और संसार की श्रृंखला को काट देता है, इससे बढ़कर क्या उत्साह क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वरूप को हमसे अलग कर दिया, ये इसको भी शिक्षा देकर के हमसे अलग कर देगा, ये भी कहीं चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। इसलिए अद्वैत अर्थात एक में मिला हुआ ये संसार नहीं देखना चाहता, ये द्वैत चाहता। महाप्रभु जी ने कहा जा रही हमारे भक्तों को तुम ऐसा करती हो, मैं तुमको प्रेम नहीं हूँ। तो मैया को कहा, मैया करके खड़ी हो गई, सब लोगों ने कहा कि इसको प्रेम नहीं, अरे अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध। तो वो चली गई और अद्वैताचार्य से क्षमा मांगा, वो उनके चरणों में गिर गए, आप जगत जननी हैं, आई आपका कभी अपराध नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, यदि कोई कहता है जो अपराध है तो मैं क्षमा कर देता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि कृष्णचंद्र का बुखार उतर जाएगा चरणों की धूली से, तो वो क्यों निकाल देंगे, ले लो। ऐसे ही उन्होंने कहा यदि हमारे प्रति अपराध है तो मैं तो लाख मुख से कहूँगा जी नहीं अपराध है, क्षमा कर दी। आ करके महापुरुष ने फिर ऐसे ही अद्भुत चेष्टा और क्या चेष्टा। कृष्णचंद्र जी गोलोक वृंदावन में जाने पर कृष्ण लीला समाप्त करने का सोच रहे हैं, भाई हमारी तीन इच्छाएं पूर्ण नहीं, राधा जी की प्रणय महिमा, कृष्ण का माधुर्य और आस्वादन करने पर उसका सुख, ये बिना राधिका जी के भाव के और अंगों की शांति के ये नहीं संभव। तो ये हमने तो आस्वादन किया नहीं, मैंने वात्सल्य रस शक्कर रस माधुर्य रस, किंतु राधा जी को हमें देखने से कैसा सुख होता है और हमारे प्रति उनका जो प्रणय है वो कैसा है, ये तो मैं सब अनुभव नहीं कर सका, ये अनुभव करना चाहता। इसके लिए सोचे जैसे मुझे फिर ब्रज में जाना पड़ा, मैं जगत में जाकर के अनुभव, उस समय युग धर्म भी उपस्थित था, कली काल आ गया। तो कली काल में कली की आयु 432,000 वर्ष की है। साधारण रूप में भगवान का अवतार इसी युग के अंत में ही होता है, जैसे त्रेता युग के अंत में राम आए, द्वापर के अंत में ही कृष्ण आए, ऐसे युगावतार युग का जब प्रयोजन होता है तो अंतिम चरम अवस्था पर वो श्रृंखलता बढ़ जाती है, धर्म संस्थापनार्थाय सम्मान, तब वो आते हैं। तो इसलिए वो सोच रहे थे ये अभी और देख और पाप बढ़ जाए और उच्छलता बढ़ जाए, वैत्यदान सब ये सब कर रहे हैं कर लें, तो मैं कब अवतरित हूँ इस पर विचार कर रहे थे। आना किंतु था जो निश्चित चलेंगे, कारण संख्या दो, दो मन माने चार, जीवों को जीव धर्म प्रचार करना अथवा पुनः का प्रचार, जीवों में प्रेम दान करना आस्वादन एक, प्रेम दान एक, तो दो मुख्य कारण और दो बहुल कारण है महाप्रभु जी के। मुख्य कारण, मुख्य का मुख्यतम प्रेम आस्वादन करना रहा, और दूसरा गौण कारण अनर्पित चरण चिरात करुणया वतीर्णा, अनर्पित चर प्रेम देना। वो भी प्रेम कैसा, उन्नत उज्ज्वल रस देना। उन्नत उज्ज्वल रस किसको कहते हैं, गोपियों के पार्थिव भाव का नाम ही उन्नत उज्ज्वल रस, इसको देने के लिए। तो राधा जी का तो यही है भाव, इसको देने के लिए है? नहीं, उन्नत उज्ज्वल पार्थिव रस भी दो प्रकार का है। एक तो राधा जी का भाव जो देने लायक नहीं, और दूसरा पांच सखियों में से जो दो दो सखियां नित्य सखी और प्रिय प्राण सखी हैं, इनका जो राधा जी की सेवा और उनके अनुगत्य में कृष्ण की सेवा, ये चीज उन्नत उज्ज्वल है, किंतु ये दिया जा सकता है। यही जीव मात्र का स्वरूप है, इसलिए इसको देने के लिए, जीवों के स्वरूप को देने के लिए, राधा जी के स्वरूपगत प्रेम का आस्वादन करने के लिए, और जदा जदा ही अधर्म से ग्लानि धर्म से ग्लानि भवति, ये दूसरा गौण का, और इसमें युग धर्म का नाम संकीर्तन का प्रचार करना, ये मुख्य कारण गौण में, ये चार कारण थे। महाप्रभु जी कृष्ण विचार कर रहे हैं कि मुझे कब चलना चाहिए। युग धर्म के लिए तो अंत समय ठीक है, नाम प्रचार करने के लिए प्रारंभ से नाम का प्रचार किया जाए तो युग का प्रभाव जो है वो जीवों पर कम रहेगा, उसे उनका कल्याण। और प्रेम कब देना चाहिए और आस्वादन कब करना चाहिए, ये विचार कर रहे हैं। इतने में एक और कारण है, अभय चार चार ने देखा जी भक्ति जगत से लुप्त हो, अभी प्रथम चरण में ही, न जाने पीछे क्या होगा। महाविष्णु के रूप में विचार कर रहे हैं, कहाँ अवतार के पहले कहाँ रहते हैं, प्रणाम दिशाई में शयन करते हैं, वहां विचार कर रहे हैं, बीरजा में यहाँ पर भी सात्विक राजसिक और तामसिक प्रकृति का कोई भी उचनीय साम्य अवस्था है, वहां पर ये विचार कर रहे हैं। ये प्रभु कब न जाने आएंगे, और इधर जगत के उपादान कारण है, ये जगत का दो कारण, एक उपादान और एक निमित्त। निमित्त को किसको कहते हैं पंडित जी, जरा व्याख्या कीजिए। तो
जिस प्रकार घट है, घट में जो घट बनती है उसमें जो
घट बनती है,
जो घट बनते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पहले जो मुख्य कारण है उसे उपादान कारण कहते हैं, और गौण कारण को निमित्त कारण कहते हैं। मुख्य कारण जिस प्रकार जैसे
उल्टा हो गया,
मुख्य कारण है जिस प्रकार माटी है, जो माटी आगे भी था अभी भी है बाद में भी रहेगा, माटी न रहने से जो कुमार था कुमार घट नहीं बना पाएगा।
दोनों
में उपादान मुख्य है,
निमित्त कारण
वो कारण निमित्त मुख्य है, तुम्हारे उपादान है। भाई तुम बीच में कोई मीमांसा करो तो, कोई मीमांसा नहीं है तुम्हारा, तुम्हें बोलो तो
निमित्त मुख्य है
वो कर रहा है, जैसे वो
निमित्त
मुख्य और ये कहते हैं उपादान पंडित जी। सब शास्त्र देखे होंगे।
नहीं नहीं, अब एक दो तरह से, दो तरह का जगत की तरह से देखने से
तो निमित्त मुख्य कारण है,
ये ऊपर से भी देख रहे हैं।
नित्ती हो
और धागा हो, डंडा हो, यदि निमित्त कारण होता कुम्हार न रहे तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए कुम्हारी
नहीं। यदि इस तरह से देखे तो उसको मुख्य कारण कहा जाएगा, क्योंकि
ज्योतिष से नहीं यही मत कहिए, अहंकार
नहीं, जैसे
मुक्ति से बोलिए। माया
जी, कुम्हार का क्या प्रयोजन है? कुम्हार का तो जरूरत नहीं है, जरूरत घट का है। तो घट का जब जरूरत है कुम्हार होने से, क्या घट घट का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मनुष्य को जरूरत है घट,
अंजलि से पानी पिला देगा?
नहीं, जब अंजलि से, जब मान लीजिए
घट मान लिया कि मिट्टी है, मिट्टी अपने कोई काम करेगा?
नहीं, मिट्टी काम नहीं कर सकता है।
पानी पिलाने का काम घट का है ना?
हाँ, घट का है। हाथ में से कितना होगा
मान लीजिए पीले,
जहाँ पर मुख नहीं है, जहाँ
मुख नहीं
मतलब मुख काम नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता, इतने दूर से कहाँ पानी पिएगा? मान लीजिए एक मिल दूर में है पानी, तो यहाँ लाने में कितना ऐसे पी सकते हैं?
घर खाली है यहाँ, और जब गंगा से पानी लाना है घट अपने लाएगा?
वो तो दोनों तरह से विशेष समय के अनुसार वो मुख्य हो गौण है।
अब इसे देखो, समझो, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त विष्णु है और कारण विष्णु, उपादान महाविष्णु जो है, प्राणाधिशाई विष्णु स्वयं स्वरूपतः वो निमित्त कारण, और उनके जो अंश हैं अद्वैताचार्य वो
उपादान कारण।
तब दोनों में कौन मुख हुआ?
और उधर से देखने से कारण और से मुख है
ना, सब तरह से, सब तरह से वैसे। एक आदमी को मैंने कहा, ये आदमी ठीक नहीं, ये बड़ा बदमाश चोर चोटा लफंगा, इसको यहाँ से बर्तन पकड़ करके इसको बाहर कर दो, यहाँ कभी पक्का देना कभी ना खाए, तुम जानता नहीं ये सब वो कैसा है। हमारे कहने से उसको तुमने बाहर कर दिया, अब उसको बाहर करने का कारण कौन है? मैं कह करके घर में चला गया ना, मैं कह करके चला गया, और तुमने क्या किया? जिस हजार लोगों में वो बैठा था, सब लोग देख रहे हैं कि ये उसका गला पकड़ करके, गले में हाथ दे करके यहाँ से बाहर कर रहा है। तुम हुआ उपादान कारण और मैं निमित्त कारण, और असल कारण कौन है उसको बाहर करने
का? भी है
ऐसे ही समझो, निमित्त कारण चेतन होता है, निमित्त प्रकृति माने भगवान की इच्छा वहां पर निमित्त है, कर्णादिशा है, और महत्त्व जो है वो कारण है, उपादान वो प्रकृति है जिसको प्रसव करती है। निमित्त कारण के रूप में कर्णादिशा उसके तरफ में इच्छा करते हैं, ये जगत सृष्टि है, और उपादान कारण जो उपादान प्रकृति है, जड़ है, अचेतन है, वो चेतन है कि नहीं? इच्छा तो है ना, और ये उपकरण महत्त्व जो है ये है जड़, उस जड़ा प्रकृति में अद्वैताचार्य जी इच्छण करते हैं कि इससे ब्रह्मांड। अब वो दोनों मिलकर के निमित्त और उपादान जगत की असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड होता है। यदि प्रभु की इच्छा ही नहीं होती तो फिर क्या होता? सब किसी भी कार्य में कारण जो होता है इच्छा होती है वो, इसलिए अद्वैताचार्य जो उपादान कारण है वो निमित्त कारण के अंश है,
निमित्त कारण ही मुख्य है,
इसलिए निमित्त कारण उनकी इच्छा है, इसलिए वो निमित्त आया, समझ?
हाँ।
इसलिए अद्वैताचार्य महाविष्णु जो है कारणाधिशायी विष्णु, उनके ये अंश, इसका ये सब में विवरण सब ये दिया गया है। कहते हैं अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहर महिमा नहीं जिगर गोचर, महाविष्णु सृष्टिकर्ता जगत आदि कार्य महाविष्णु माने जगत इत्यादि कार्य की सृष्टि करते हैं, तहां अवतार साक्षात
आचार्य
अवतार हो गया ना। इसलिए विष्णु की जो इच्छा है वही निमित्त कारण है महाविष्णु, और उनकी इच्छा के अधीन अद्वैताचार्य की जो इच्छा है ये गौतम, ये भी महाविष्णु है, वो भी महाविष्णु है, किंतु वो महाविष्णु के ये अंश है। यहाँ पर उपादान क्या है, महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से पांच प्रकार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श
पंच तन्मात्र
एकादश इंद्रिय और फिर इनके संयोग से पंचभूत स्थूल, स्थूल पंचभूत पीछे होता है, तो ये कितना हुआ, सोलह हुआ ना, सोलह और इसके बाद में पंचभूतों के रूप रस शब्द गंध स्पर्श होते हैं पंचतन मात्रा, तो ये पांच और वो ग्यारह
इंद्रिय,
सोलह और पांच इक्कीस पंचभूत, और मन मन तो हो गया, बुद्धि और अहंकार जोड़ दिया गया, अहंकार तो उसमें हाँ अहंकार चार, चौबीस प्रकृति और पुरुष, छब्बीस आत्मा और परमात्मा, ये अट्ठाईस तत्व हैं, जिसमें दो को छोड़ करके बाकी को सांख लेते हैं
छब्बीस
और परमाणु वाले लेते हैं, परमाणु माने
नहीं आई,
नहीं आई भगवान को और जीवात्मा को उसमें नहीं लेते। पुरुष जे पुरुष सृष्टि करण माया है, पुरुष सृष्टि स्थिति करण माया है, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करण नहीं है, यह चाति का इच्छा है, अनंत मुक्ति करण प्रकाश एक एक मुक्ति करण ब्रह्मांड एक प्रकाश प्रवेश से पुरुष अंश और द्वैत नहीं कुछ हुए, उनकी ये अंश है मैंने महाविष्णु के ये अंश है। सहाय करण तार लैया प्रधान कोटि ब्रह्मांड करण इच्छा है निर्माण, माया जैसे दुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, किसी को भी अभी तक नहीं बताया एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, एक उपादान प्रभु एक निमाता निमित्त
निमित्त।
महाविष्णु प्रणादिशाई विष्णु स्वयं निमित्त प्रभु निमित्त ईश्वर, और ये कोई कोई कहते हैं ये प्रकृति से स्वयं सृष्टि होती है, स्वयं सृष्टि को कहते कैसे उदाहरण दिया, एक तृण है हरे हरे तृण है और उसको गाय खाती है, और गाय खाने से उसको दूध उतरता है ना, तो गाय ने दूध घास खाया और अपने आप दूध उतर गया, इसमें दूसरे लोगों की जरूरत क्या है। इसी तरह से प्रकृति अपने आप सब कुछ करती है, तो किसी भोले भाले वैष्णव ने कहा, पहले वाला जो युक्ति है वो पंडित जी ने भाई घास खाने से तो दूध उतर जाता है, तो वैष्णव जो थे सर भोले भाले जरा पढ़े लिखे कम थे, भाई बैल भी तो वही घास खाता है उसको क्यों तो पंडित जी थोड़ा सा शिक्षक इसे करने सोचने लगे ये सब युक्ति याद रखना, मैं तो तुम लोग को बोला भाला समझ करके ठग लेंगे,
शंख
ये शंख वाले कह रहे हैं जैसे भाई वैसा होता है अपने आप हो जाता है, भाई पैर को क्यों नहीं उतरता, अभी तो अधिक घास खा ले,
बच्चा नहीं हो सकता।
ठीक है,
फिर उन्होंने कहा जे भाई जैसे उपादान कारण है, घर बना है ना, इसमें ईंट और ये सब दिखाई पड़ता है। तो वैष्णव ने कहा कि भाई यदि ईंट ही से घर होता और मसाले से और पानी और सीमेंट से, तो 1,00,000 बोरी सीमेंट यहाँ रखता हूँ और 10 करोड़ ईंट यहाँ रख देता हूँ और पानी यहाँ पर 1 सरोवर भर करके रख देता हूँ अलग अलग, और लकड़ी और पत्थर भी यहाँ पर रख देता हूँ, घर बन जाए?
नहीं,
घर बनेगा? उपादान रहने से ही नहीं होगा।
ठीक, निमित्त
वही मुख है, निमित्त का,
इसलिए निमित्त मुख है प्रभु की इच्छा है। उन्होंने इच्छा की, कागज और कलम सब कुछ है किंतु अपने से आप नहीं दिखे, इसलिए जड़ उपादान जो प्रकृति है उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता जब तक कि प्रभु की इच्छा न हो। इसलिए अद्वैताचार्य ही उपादान के मुख्य प्रेरक हैं, और निमित्त इसलिए प्रभु को कहा गया कि उन्हीं की इच्छा से ये इच्छा करते हैं, इसलिए अपने आप कोई भी कार्य नहीं होता जगत में, इसलिए प्रकृति बात जगत का है, ये गड़बड़ का है।
फिर
वो कहते हैं एक पंगु है प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मैंने जड़ा और पुरुष चेतन, ये दोनों मिलकर के सृष्टि होती है। प्रकृति निष्क्रिय है ना? उसमें कोई इच्छा नहीं है, और पुरुष जो है वो निष्क्रिय एकदम है, कुछ करता नहीं है, किंतु दोनों जब मिल जाते हैं तो अपने आप काम हो जाता है, ये जगत की अपने आप सृष्टि हो जाती है, सृष्टि करने वाला कोई नहीं है, जैसे आजकल वो साम्यवाद वाले कहते हैं, बंगाल का चौपट कर दिया, बंगाल को चौपट कर दिया और सभी विश्व, अब लोग धीरे 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 सोच रहे हैं और इधर में आ रहे हैं कुछ आस्तिकता की तरफ। तो कहते हैं जैसे इसमें भगवान की क्या जरूरत है झूठ मूठ को मानने का, वो अपने आप प्रकृति ऐसी है जिसे कि ये सृष्टि हो जाती है। कहते हैं जैसे पंगु, पंगु माने जिसका पैर लंगड़ा और एक अंधा है, दोनों मिल गए, उनको जाना था कहीं मथुरा जाना था, तो लंगड़ा ने कहा कि हमको अपने कंधे पर चढ़ाओ, मैं आंख से देख करके तुमको बाएं दाहिना सामने रास्ता बतलाऊंगा, और तुम्हारा पैर है उधर में चलना, बस दोनों पहुंच जाएंगे लंगड़ा और।
Oh,